ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। झारखंड में विधानसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। उधर महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान जारी है। महाराष्ट्र में मतदान 6 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग के अनुसार झारखंड में दोपहर 3 बजे तक 61% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। झारखंड में 12 जिलों की 38 सीटों पर मतदान हुआ। नक्सल प्रभावित 31 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 4 बजे संपन्न हो गया। इस चरण में 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाराष्ट्र में दोपहर 3 बजे तक 45% से अधिक मतदान की खबर है। राज्य में सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों के लिए भी उपचुनाव कराया जा रहा है। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भी आज ही वोट डाले जा रहे हैं। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट भी शामिल है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव तथा उपचुनावों की मतगणना 23 नवम्बर को होगी। कानपुर सिटी की सीसामऊ विधानसभा सीट पर मतदाताओं को वोट डालने से रोकने और उनकी जांच से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मी को चुनाव आयोग के आदेश के बाद निलंबित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम जॉर्जटाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली से वार्ता करेंगे। वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा पर आज सुबह गयाना पहुंचे। गयाना की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस प्रदान करेगी। बारबाडोस भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रतिष्ठित ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। बैठक के दौरान वे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को भी संबोधित करेंगे। ADMM आसियान में सर्वोच्च रक्षा परामर्शदात्री और सहयोग तंत्र है। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज नेपाल की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। यात्रा के दौरान जनरल द्विवेदी को नेपाल की थल सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था $30 बिलियन के उद्योग के रूप में उभर चुकी है। श्री वैष्णव ने अंग्रेजी और हिंदी के समाचार पत्रों में प्रकाशित एक लेख में ये बात कही। 55वां भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में शुरू हो रहा है। ये 28 नवंबर तक चलेगा। सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि इस वर्ष फिल्म महोत्सव युवा फिल्मकारों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि 100 युवा प्रतिभाएं क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्लेटफॉर्म पर अपनी सृजन क्षमता प्रस्तुत करेंगी। इस वर्ष समारोह में 100 देशों की 400 से भी अधिक फिल्में दिखाई जाएंगी। मौसम विभाग ने आज तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके अलावा लक्षद्वीप केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने कहा है कि इस सप्ताह में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि केवल 50% कर्मचारी ही घर से काम करेंगे। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले की आशंका के चलते अमरीकी दूतावास को बंद कर दिया गया है। अमरीकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि हवाई अलर्ट की स्थिति में वे तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहें। हार्दिक पांड्या ने आईसीसी पुरुष T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में शीर्ष स्थान फिर से हासिल कर लिया है। नवीनतम रैंकिंग में तिलक वर्मा तीसरे और सूर्य कुमार यादव चौथे स्थान पर हैं। गेंदबाजी में अर्शदीप 9वें पायदान पर हैं। पीवी सिंधु, मालविका बंसोड और लक्ष्य सेन आज चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पुरुष वर्ग में लक्ष्य ने 7वीं वरीयता प्राप्त मलेशिया के ली जियाजुआ को पराजित किया। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला चीन के साथ जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक पहले क्वार्टर में कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।